पृष्ठ संख्या 104, फंतासी और नाटकीयता, एक विशेष प्रसंग। सरोज स्मृत निराला द्वारा भोगे हुए यथार्थ की कविता है। ऐसी रचनाओं में मनोराज्य या फंतासीय स्थितियों का ना होना ही प्रासंगिक होता है, पर कविता इतिवृत्ति मात्र भी नहीं है। भले ही वह ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं से संबंधित हो अथवा व्यक्तिगत जीवन से, कवि की कल्पना तो उसमें हस्तक्षेप करती ही है, और तभी कोई घटना कविता का रूप लेती है। यह कविता का एक निजी और सर्वसामान्य सत्य है। सरोज स्मृति में भी कल्पना का कवि-जनोचित सामान्य उपयोग स्थल स्थल पर हुआ है। मसलन निराला का यह कहना कि सरोज उनसे पहले स्वर्ग को इसलिए चली गई कि वह उनके वहाँ पहुँचने के समय वहाँ विद्यमान रहना चाहती थी, जिससे कि वह अपने अति अक्षम पिता को सक्षम रूप में दुस्तर अंधकार का मार्ग तय करा सके। कल्पना का प्रदोय है जो पिता और पुत्री के बीच की रागात्मकता को दृढ़तर बनाता है और कविता को भावात्मक स्फूर्ति देता है। प्रत्येक कथाश्रयी कविता में कल्पना की न्यूनतम इतनी भूमिका रहती ही है। सरोज स्मृति में ऐसे और भी स्थल हैं। फंतासी का चरित्र कल्पना के आधारतः जुड़ा होने के साथ थोड़ा भिन्न होता है। कल्पना तब तक कल्पना रहती है जब तक वह नई नई उद्भावनाओं, नए नए बिंब, नए अप्रस्तुत, नई करणात्मक स्थितियों की खोज, यथार्थ स्थिति का भावात्मक विस्तार आदि से कविता की विषय वस्तु की श्री वृद्धि किया करती है। वह तब अपना मूल चरित्र छोड़कर फंतासी का रूप ले लेती है जब कवि मूल विषय आधार से कल्पना की उड़ान के सहारे दूर चला जाता है और मूल विषय से असंबद्ध न होते हुए भी स्वतंत्र उद्भावनाओं के लोक में चला जाता है। पिछले अध्याय में फंतासी पर विचार किया जा चुका है। सरोज स्मृति में इस दृष्टि से एक विशिष्ट स्थल है। प्रसंग सरोज के विवाह का है। निराला सर्वथा नए ढंग से उसका आयोजन करते हैं। वे पुरोहित के स्थान पर स्वयं पगड़ी बांध कर बैठते हैं। सरोज उन्हें इस रूप में देखकर हौले से हंस पड़ती है। यह मंद हंसी निराला को एक दूसरे ही लोक में पहुंचा देती है। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर थर। सरोज की मंद हंसी निराला की अपनी पत्नी मनोहरा देवी की बिंबात्मक स्मृति तक पहुंचा देती है और वे क्षण भर के लिए कालांतरित और देहांतरित होकर उस अतीत क्षण में पहुंच जाते हैं जब उन्होंने पहली बार पत्नी के श्रृंगार मुखर सौंदर्य को देखा था। उनका यह वर्तमान से अतीत में पहुंचा हुआ मन इस सीमा तक वर्तमान से कट जाता है कि वह भीतर ही भीतर अपनी प्रिया मनोहरा देवी पत्नी को संबोधित कर उठते हैं। तू खुली एक उच्छ्वास संग, यह तू संबोधन पत्नी के लिए है। हल्यूसिनेशन का यह एक बड़ा ही सशक्त, सहज और पृष्ठ संख्या 105 जीवंत चित्र है। यहाँ न केवल अवचेतन में निहित प्रिया का बिंब केवल अपनी झलक देता है, अपितु वह इतनी गाढ़ रूप रेखा में उभरता है कि कवि उसे संबोधित कर उठता है। तभी तो निराला के नेत्र क्षण भर के लिए ज्योतिहीन हो जाते हैं और उनके होठ भावावेश में थरथरा उठते हैं। प्रसाद ने भी कामायनी में इसी प्रकार के हल्यूसिनेशन की स्थिति का एक सशक्त चित्र दिया है। जब मनु को काम के शाप की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जब गूंजी यह तीखी वाणी कंपित करती अंबर अकुल, मन को जैसे चुभ गया शूल। भावात्मक विश्राम की यह स्थिति क्षण भर रहती है। हल्यूसिनेशन या अवस्तु बोध या मिथ्याभास की स्थिति देर तक नहीं रहती। यहाँ निराला का वर्णन कौशल दृष्टव्य है। वे क्रमशः सहज होते हैं और मनोहरा देवी की सरोज के साथ सादृश्यता का निर्वाह करते हुए इस बिंदु पर आकार प्रकरण समाप्त करते हैं कि उनके और उनकी पत्नी के बीच जो श्रृंगार भाव अमूर्त रूप में लंबे समय तक विद्यमान रहा था, उसी ने सरोज के रथ जैसे रूप में सकारता ग्रहण कर ली है। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे बसंत की प्रथम गीत, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वासित धार, गाया स्वर्गीया प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। सरोज को निराला पहले ही गीते मेरी और जीवित कविते जैसे संबोधन दे चुके हैं, जिनकी एक व्यंजना यह भी हो सकती है कि निराला की दो एक कविताओं के रूप चित्रण में शायद सरोज आधार के रूप में रही होगी। निराला जैसे बड़े और आत्मनिर्वासन की सीमा तक तटस्थ रह सकने वाले कवि के लिए यह चौंकाने वाली बात नहीं। यह छोटा सा प्रकरण यथार्थ के आधार पर यथार्थ के अतिक्रमण का एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका संदर्भ विपर्यय पुत्री के संदर्भ में प्रिया पत्नी को संबोधित करना नाटकीयता की दृष्टि से एक सशक्त अभिनय क्षण सिद्ध होगा। सारे चमत्कार के मूल में फंतासी की कला है। निराला इस कला के मर्मज्ञ थे, जिसका परिचय उनकी अन्य लंबी तुलसीदास तथा प्रगीतात्मक घन तम से आवृत धरणी है कविता में पाया जा सकता है। सरोज स्मृति के इस प्रकरण का वैशिष्ट्य इस बात में है कि यहाँ हल्यूसिनेशन संवेदनात्मक प्रकृति के चरम क्षण में घटित होता है, जबकि सामान्यतया यह स्थिति चिंतन तथा ऊहापोह की गहनता के कारण उत्पन्न होती है। साथ ही यह भी कि इस स्थिति में रूपांतरण तो होता है, किंतु कालांतरण का सार्थक चित्रण बहुत कम देखने को मिलता है, जो इस कविता के अत्यंत सहज रूप में घटित होता है। अंधेरे में कविता में रूपांतरण और हस्तांतरण बार बार घटित होता है। महात्मा गांधी, तिलक, टॉल्स्टॉय या कि मनु, रक्तालोकनाथ पुरुष आदि रूपांतरण की फंतासीय प्रक्रिया में पृष्ठ संख्या 106 उभरते हैं, और तिलस्मी खोह सुनी राह, बरगद चौराहा गली का सीढ़ियोंदार मकान आदि हस्तांतरण की प्रक्रिया में प्रोसेशन का सारा तामझाम हल्यूसिनेशन की ही संरचना है। वस्तुतः अंधेरे में कविता को पढ़ना एक अटूट हल्यूसिनेशन की विभिन्न स्थितियों से गुजरना है। कामायनी में भी इसी प्रकार के एकाधिक स्थल मिलते हैं, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है, पर सरोज स्मृति के जैसा संवेदनश्रयी कालांतरण अन्यत्र शायद ही कहीं देखने को मिले। यो कालांतरण का फंतासीय कौशल हिंदी कविता में नितान अनुपलब्ध नहीं है। पंत के सत्य काम में वैदिक युग का पात्र गांधी के क्रियाकलाप को विजन के रूप में देखता है। ऐसे स्थल नरेश मेहता की आख्यानक काव्य कृतियों में भी मिल जाएंगे, किंतु जैसा कि पहले कहा गया है, भावात्मक तीव्रता की स्थिति में क्षण भर के लिए तत्कालिक कालांतरण का फंतासीय सौष्ठव और उतनी ही सहज तत्कालिकता के साथ काव्यनायक का वास्तविकता के स्तर पर आ जाना निराला की अनूठी प्रतिभा का निश्चय ही अप्रतिम निदर्शन का यह छोटा सा फंतासीय प्रकरण जितना कलात्मक है, उतना ही नाटकीय भी। नाटकीयता अंधेरे में भी है, पर वह समूची कविता में फंतासी के साथ अनुशयुत है, और उसके वाचक शब्द शेन बदलता है भी जहाँ मिलते हैं, जिनकी ओर संकेत पहले अध्याय में किया गया है। सरोज स्मृति के इस चित्रण की संश्लिष्ट सघनता अंधेरे में के समूचे फैलाव का अतिक्रमण कर जाती है।